नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी भी पंजाबी है जिसे मैं हिंदी में सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। कहानी का नाम है खसमन खाने। इसे लिखा है गुरमुख सिंह मुसाफिर ने। यह कहानी लाला जी की देशभक्त है, शरणार्थियों की सेवा करते हैं। गणेश टैक्सी ड्राइवर है। चानन शाह अमीर और खुदगर्ज है। यह बंटवारे के समय की कहानी है। हर व्यक्ति अपनी परेशानियों से जूझ रहा है। एक गर्भवती महिला भी बहुत परेशान है। तो चलिए कहानी शुरू करें। खसमन खाने। जागो, एक मिनट में द्रौपदी ने कहा। नहीं, उसके मुंह से निकल गया खसमन खाने। यह पंजाबी का तकिया कलाम है। हॉर्न की कड़क आवाज़ से उसके कान फटने को आ रहे थे। आज तक हॉर्न की जितनी भी आवाज़ें उसके कान में पड़ी थी, यह आवाज़ सबसे कड़क थी। गणेशा टैक्सी वाला नहीं, चानन शाह वही होंगे। अपने पति के मुंह से चानन शाह का नाम सुनकर वह थोड़ा शर्मा गई। हाय, कहीं शाह साहब ने सुन ही ना लिया हो। 3-4 दिन पहले ही सुबह के अंधेरे में टैक्सी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर द्रौपदी के मुंह से निकला था खसमन खाने के शायद नींद ही नहीं आती। तब भगत शाह ने समझाया कि इसकी टैक्सी का चलान हो गया है, बेचारा गरीब और शरणार्थी है, सिफारिश के लिए आया है। द्रौपदी और ऊंची आवाज़ में कहा, खाए खसमन। गणेश ने यह बात सुन ली थी, पर ज़रूरतमंद क्या कहता। आज चानन शाह का लिहाज भगत राम को द्रौपदी की झिड़की से बचा गया। गाड़ी दरवाजे के पास खड़ी करके चानन शाह सीधा भगत राम के सोने के कमरे में दाखिल हुआ। द्रौपदी ने स्वागत कर कुर्सी उनके पास रख दी। चुटके बजाते खड़े खड़े ही चानन शाह ने पूछा, लाला जी तैयार हैं? हाँ जी, मैं तैयार हूँ, बस दवाई की शीशी ले लूँ, आते वक्त कहीं देर ना हो जाए। भगत सिंह की बात को काटते हुए चानन शाह ने कहा, नहीं जी, जल्दी ही वापस आ जाएंगे, नई मोटर है, 2.5 घंटे में अम्बाले, फिर 1 घंटा वहाँ काम करके, 2.5 घंटे में दिल्ली, पूरे छः घंटे की बात है। अभी 6 बजे हैं, 10-15 मिनट में निकल लेंगे और 12 बजे तक वापस आ जाएंगे। भगत राम ने कहा, शरणार्थी कैंप में मुझे 2-2.25 घंटे लग जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे तक शाम से पहले ही लौट आएंगे। उठिए जल्दी करिए, जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी ही वापस आएंगे। द्रौपदी ने कहा, अगर देर होने का अंदेशा हो तो रात को वहाँ रुक जाएं और साथ में भारी कंबल या बिस्तरा भी ले लें। चानन शाह ने द्रौपदी को बात पूरी नहीं करने दी। चलिए कुछ भी साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं, वापस आ जाएंगे, अगर सर्दी लगे तो गाड़ी में एक कंबल पड़ा है, ओढ़ देंगे, 3 बजे तक आपको घर पहुंचा देंगे। नई गाड़ी में नरम गद्दों पर आराम से बैठते हुए भगत राम ने कहा, द्रौपदी जी, जो कोई भी काम के लिए आए तो उन्हें 3 बजे का समय दे दें। चानन शाह ने भक्त जी के पैरों पर कंबल रखते हुए कहा, बस आप डिप्टी कमिश्नर जी को मुंह दिखाएं, हमारा काम हो जाएगा, फिर आपको जहां जाना हो खुशी से चले जाएं, पेट्रोल फुल है। लाला भगत राम शरणार्थी नेता हैं, सुबह से शाम तक इनके पास ज़रूरतमंद लोग आते रहते हैं, यह सब की बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनका काम कराने का प्रयत्न करते हैं। द्रौपदी का स्वभाव भी अच्छा है और दिल की भी अच्छी है, पर सुबह से शाम तक लोग दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं, इस वजह से वह परेशान रहती है। अभी गाड़ी बाहर निकली ही थी कि एक शरणार्थी ने लाला जी के बारे में पूछा। द्रौपदी ने चानन शाह के साथ अम्बाले जाने की बात कही तो वह बड़बड़ाता हुआ चला गया। दूसरे के साथ चल पड़ते हैं, अगर आज मेरे साथ सेक्रेटरियट पास नहीं गए तो शाम तक बर्तन बासन सड़क पर आ जाएंगे। अभी वह गया ही था, एक और व्यक्ति आ गया और वह कहने लगा, मेरा कर्जा तो मंजूर करा दिए हैं, पर लेने समय जमानत कौन देगा? मेरे ट्रांसफ़र के कागज़ पर आज दस्तखत हो जाते, मकान संबंधी शरणार्थियों से भरा पड़ा है, माता पिता बुजुर्ग हैं और पत्नी को बच्चा होने वाला है। जहाँ ट्रांसफ़र करेंगे वहाँ रहने के लिए टेंट तक की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, मैं परिवार में ADS था, यहाँ क्लर्क की नौकरी मिली है। उससे भी मैं पेशावर में ADS था, यहाँ क्लर्क की नौकरी मिली है। उससे भी हटाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बहन जी, 160 बंगलों के मालिक को यहाँ किसी कोठे के आंगन में भी जगह ना मिले तो बताओ सिर कहाँ छुपाएं। द्रौपदी आज सारे आने वाले शरणार्थियों की समस्याएं सुनती रही और उन्हें 3 बजे आने का वक्त देती रही। नरम और नाजुक पानी की बूंदें बरस बरस कर पत्थर की सख्त चट्टानों के बीच जाकर अपनी जगह बना लेती हैं। द्रौपदी के दिल में भी एक माँ का दिल है। एक शरणार्थी पति गया, बेटा गया, अब इज्जत भी जाती है। एक अधेड़ उम्र की ही शरणार्थी के मुँह से यह शब्द सुन के द्रौपदी 3 बजे तक आने का उसे कहने ही वाली थी कि शरणार्थी फिर बोल पड़ी। आंखों में जान नहीं, पर जान के बिना भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे उस दुखी शरणार्थन की दर्द कहानी सुनकर वह दूसरों को 3 बजे आना कहना उसके ख्याल से उतर गया। एक और शरणार्थी आई जिसने अपने मैले कुचेले दुपट्टे से मुश्किल से अपना शरीर ढका हुआ था। द्रौपदी की तरफ आती दिखी। शरीर के अगले हिस्से को छुपाने के लिए उसका सिर इतना झुका हुआ था कि वह सामने से आने जाने वाले को नहीं देख सकती थी। धरती में आंखें गड़ाए वह दरवाजे के पास पहुंची। वह अपने ध्यान में थी। दूसरे शरणार्थियों का सिर उसके पेट में लगा। वह धड़ाम से गिर पड़ी। गिरने की आवाज़ से ही द्रौपदी का ध्यान उसकी ओर गया। गिरने वाली औरत को दूसरे शरणार्थी की मदद से उसने बाहर वाले कमरे में दरी जो आने जाने के कारण मिट्टी से भरी थी उस पर लिटा दिया। कमरे में बैठे लोगों को 3 बजे आने का कहकर उन्हें उठा दिया। सभी चले गए। गिरने वाली को बेहोश देखकर द्रौपदी के बेहोश गुम हो गए। वह पसीने पसीने हो गई। पहली बैठी शरणार्थी ने उठकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। घबराई हुई द्रौपदी ने दरवाजे की झिरी से झाँक कर देखा। इसी बीच उसे हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसे लगा 3 बज गए। नहीं, पर यह तो गणेशा था, खसमानु खाना। उसके मुंह से यह लफ्ज निकल तो गए पर उसका मन कुछ सोच में पड़ गया। उसने गणेशा को बुलाया। उसे कुछ संकोच हो रहा था पर मजबूरी थी। वह बोली, करोल बाग गुरुद्वारे रोड लेडी डॉक्टर करतार कौर का नाम किसी से पूछ लेना। गणेशा सारी दिल्ली में टैक्सी चलाता था, वह जानता था। वह सुनते ही टैक्सी लेकर चला गया। गणेश ने जल्दी वापस आकर दरवाजे पर जोर से हॉर्न बजाया, पर द्रौपदी का ध्यान इस समय सिर्फ शरणार्थी की हाय हाय और नए जीवन दी रोने की आवाज़ में ही ध्यान था। लेडी डॉक्टर को देखकर उसकी जान में जान आई। शरणार्थी की हालत देखकर उसे दवा देकर करतारपुर ने द्रौपदी की प्रशंसा की। टैक्सी वाले के चले जाने के बाद ही मुझे ख्याल आया, नहीं तो मैं फ़ोन करती। आपने नंबर दिया था, उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा। वह घुमड़ा सिंह का नंबर था, पर अब वह जानकारी ही नहीं देते, पैसे वाले आदमी हैं। ना हाँ पर आपने किसी मिलने जुलने वालों का काम हो तो तुरंत किसी को भेज देते हैं, खसमान खाने। पैसे का इतना घमंड, द्रौपदी ने कहा। लेडी डॉक्टर ने उस शरणार्थी का नाम और पता पूछा। द्रौपदी ने कहा, अभी हमने पता और नाम पूछा ही नहीं, जरा ठीक तो हो जाए। यह भी अच्छा हुआ, अगर कहीं सड़क पर बिचारी गिरती। अच्छा, मुझे अपने काम से आना ही था, लाला जी ने कहा। क्यों, क्या बात है? वह अंबाले गए हैं, अब आने वाले हैं। अब क्या बताऊं, जिस गैराज में मैं काम करती हूं वहां मैंने पार्टीशन करवाया है। दिन में काम करके रात को वहीं सोती हूँ। मुझे पता चला है कि मेरे वाला गैराज बख्शी खुशहाल चंद एडवोकेटेट ने खरीद लिया और अपने नाम कर लिया। अच्छा, खसमानु खाने। हाँ द्रौपदी बहन, मुझे तो रात को नींद ही नहीं आती, चिंता से 3 बज गए हैं, फिर 3:30, 4, फिर 5। लाला जी के घर पर शरणार्थियों की भीड़ लगी है, पर वह अभी तक नहीं आए अम्बाले से। द्रौपदी ने अपने बेटे से कहा, चानन शाह के घर फ़ोन लगाकर पता करो। लड़के ने टेलीफोन की किताब देखकर कहा, उसके घर का तो टेलीफोन का नंबर नहीं है। नहीं है, लाला जी ने अभी ही तो कोशिश करके टेलीफोन लगवा दिया था, द्रौपदी की बात सुनकर एक शरणार्थी ने कहा, लाला जी तो दौड़ दौड़ के पूंजीपतियों का काम ही करते हैं, खसमानु खाने आ जाते हैं नुक्स निकालने, उनके बिना काम भी तो नहीं चलता। अब चानंद साहब अपनी गाड़ी में बिठा कर अंबाले ले गए हैं, काम तो उनका भी था, पर लाला जी को भी शरणार्थियों से मिलने जाना था, तो आराम से चले गए और आराम से आ जाएंगे। बात करते करते उसने अपने बेटे को आवाज़ दी, टेलीफोन दफ्तर से लाला चानंद साहब का नंबर पता करो। कहाँ से बोल रहे हैं? लाला चानंद साहब की कोठी से। शाह साहब अंबाले गए हैं? हाँ, अंबाले गए थे। हाँ, आ गए हैं, उनको ज़रा टेलीफोन देना। आप थोड़ी देर में फ़ोन कर, इस समय वह बाहर बगीचे में मेहमानों के साथ पार्टी कर रहे हैं। अच्छा, उनसे पता करके बताएं कि लाला भगत राम उनके साथ गए थे वो कहाँ हैं। आप कौन बोल रही हैं? द्रौपदी, लाला जी के घर से। आप दो मिनट के लिए फ़ोन करें या अपना नंबर दें। द्रौपदी ने अपना नंबर देखकर डॉक्टर साहिबा के साथ गली पार करने लगी तो फ़ोन की घंटी बज उठी। हेलो, हाँ जी, शाह जी कह रहे हैं कि लाला जी डिप्टी कमिश्नर की कोठी से ही तांगा लेकर शरणार्थी कैंप चले गए थे। मोटर में तेल कम था, शाह जी को एक दो और काम करने थे, अपने काम करते उन्हें देर हो गई थी, घर पर हमारे मेहमान बुलाए हुए थे, मोटर में तेल भी कम था, इसलिए वो लाला जी को लेने नहीं जा पाए। वह कह ही रहा था कि द्रौपदी ने फ़ोन पटक दिया और कहा, खसमानु खाने, शरणार्थी सबों को बात पता लग गई, वो सब अपने अपने घर चले गए। जैसे जैसे रात गहरा रही थी, द्रौपदी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कोई भी मोटर की आवाज़ उसे लगता उसके दरवाजे के पास बज रही है, पर मोटर आगे बढ़ जाती। रात जागते जागते बीत रही थी, साथ ही वह जच्चा बच्चा को भी संभाल रही थी। माघ पूस की रात बिना बिस्तर कोई कपड़ा भी नहीं ले गए, दवा के बिना लाला जी को नींद नहीं आती। उठते बैठते जच्चा बच्चा को कपड़ा ठीक करती, कभी अंगीठी की आँख ठीक करती, कभी बाहर झाँकती, ऐसा करते करते सवेर ही हो गई। आज कल वाले समय पर ही उनके दरवाजे पर मोटर आकर रुकी। आज भी उस हॉर्न की आवाज़ कड़क थी, पर द्रौपदी को वह आवाज़ मीठी लगी। गणेश ने टैक्सी का दरवाज़ा खोला, पतले से कंबल में लिपटे लाला जी बाहर निकले। द्रौपदी अपनी उंगलियों से कंबल की मोटाई जांच रही थी और लाला जी आ रहे थे और कह रहे थे, शरणार्थी बेचारा रात सर्दी से मर गया होगा, उसके पास एक ही कंबल था जो उसने मुझे रेल में बिठाते समय दे दिया था। द्रौपदी थे अपना बायां हाथ अपने कुर्ते की जेब में डाला। सत श्री अकाल की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। गणेश की टैक्सी जा रही थी, उसकी टैक्सी को दूर तक जाते देख कहा, इस गरीब को देखो और वो खसमन खाना। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी भी पंजाबी है, जिसे मैं हिंदी में सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। कहानी का नाम है खसमन खाने। इसे लिखा है गुरमुख सिंह मुसाफिर ने। यह कहानी लाला जी की देशभक्त है, शरणार्थियों की सेवा करते हैं। गणेश टैक्सी ड्राइवर है। चानन शाह अमीर और खुदगर्ज है। यह बंटवारे के समय की कहानी है। हर व्यक्ति अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, एक गर्भवती महिला भी बहुत परेशान है। तो चलिए कहानी शुरू करें, खसमन खाने। जागो, एक मिनट में द्रौपदी ने कहा। नहीं, उसके मुंह से निकल गया खसमन खाने। यह पंजाबी का तकिया कलाम है। हॉर्न की कड़क आवाज़ से उसके कान फटने को आ रहे थे। आज तक हॉर्न की जितनी भी आवाज़ें उसके कान में पड़ी थी, यह आवाज़ सबसे कड़क थी। गणेशा टैक्सी वाला नहीं, चानन सा वही होंगे। अपने पति के मुंह से चानन सा का नाम सुनकर वह थोड़ा शर्मा गई। हाय, कहीं शाह साहब ने सुन ही न लिया हो। तीन चार दिन पहले ही सुबह के अंधेरे में टैक्सी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर द्रौपदी के मुंह से निकला था खसम खाने कि शायद नींद ही नहीं आती। तब भगत शाह ने समझाया कि इसकी टैक्सी का चलान हो गया है, बेचारा गरीब और शरणार्थी है, सिफारिश के लिए आया है। द्रौपदी और ऊंची आवाज में कहा, खाए खसमन। गणेश ने यह बात सुन ली थी, पर जरूरतमंद क्या कहता। आज चांदन शाह का देहात भगत राम को द्रौपदी की झिड़की से बचा गया। गाड़ी दरवाजे के पास खड़ी करके चांदन शाह सीधा भगत राम के सोने के कमरे में दाखिल हुआ। द्रौपदी ने स्वागत कर कुर्सी उनके पास रख दी। चुटकी बजाते खड़े खड़े ही चांदन शाह ने पूछा, लाला जी तैयार हैं? हाँ जी मैं तैयार हूँ, बस दवाई की शीशी ले लूँ, आते वक्त कहीं देर ना हो जाए। भगत सिंह की बात को काटते हुए चांदन शाह ने कहा, नहीं जी जल्दी ही वापस आ जाएंगे, नई मोटर है, 2.5 घंटे में अंबाले, फिर 1 घंटा वहाँ काम करके 2.5 घंटे में दिल्ली, पूरे छः घंटे की बात है। अभी 6 बजे हैं, 10-15 मिनट में निकल लेंगे और 12 बजे तक वापस आ जाएंगे। भगत राम ने कहा, शरणार्थी कैंप में मुझे 2-2.25 घंटे लग जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे तक शाम से पहले ही लौट आएंगे। उठिए जल्दी करिए, जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी ही वापस आएंगे। द्रौपदी ने कहा, अगर देर होने का अंदेशा हो तो रात को वहाँ रुक जाएं और साथ में भारी कंबल या बिस्तर भी ले लें। चांदन शाह ने द्रौपदी को बात पूरी नहीं करने दी। चलिए कुछ भी साथ ले जाने की जरूरत नहीं, वापस आ जाएंगे, अगर सर्दी लगे तो गाड़ी में एक कंबल पड़ा है ओढ़ देंगे, 3 बजे तक आपको घर पहुंचा देंगे। नई गाड़ी में नरम गद्दों पर आराम से बैठते हुए भगत राम ने कहा, द्रौपदी जी जो कोई भी काम के लिए आए तो उन्हें 3 बजे का समय दे दें। चांदन शाह ने भगत जी के पैरों पर कंबल रखते हुए कहा, बस आप डिप्टी कमिश्नर जी को मुंह दिखाएं, हमारा काम हो जाएगा, फिर आपको जहां जाना हो खुशी से चले जाएं। पेट्रोल फुल है, लाला भगत राम शरणार्थी नेता हैं, सुबह से शाम तक इनके पास ज़रूरतमंद लोग आते रहते हैं, यह सब की बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनका काम कराने का प्रयत्न करते हैं। द्रौपदी का स्वभाव भी अच्छा है और दिल की भी अच्छी है, पर सुबह से शाम तक लोग दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं, इस वजह से वह परेशान रहती है। अभी गाड़ी बाहर निकली ही थी कि एक शरणार्थी ने लाला जी के बारे में पूछा। द्रौपदी ने चांदन शाह के साथ अंबाले जाने की बात कही तो वह बड़बड़ाता हुआ चला गया। दूसरे के साथ चल पड़ते हैं, अगर आज मेरे साथ सेक्रेटरी पास नहीं गए तो शाम तक बर्तन बासन सड़क पर आ जाएंगे। अभी वह गया ही था, एक और व्यक्ति आ गया और वह कहने लगा, मेरा कर्जा तो मंजूर करा दिए हैं पर लेने समय जमानत कौन देगा, मेरे ट्रांसफ़र के कागज़ पर आज दस्तखत हो जाते, मकान संबंधी शरणार्थियों से भरा पड़ा है, माता पिता बुजुर्ग हैं और पत्नी को बच्चा होने वाला है, जहाँ ट्रांसफ़र करेंगे वहाँ रहने के लिए टेंट तक की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, मैं परिवार में ADS था, यहाँ क्लर्क की नौकरी मिली है, उससे भी मैं पेशावर में ADS था, यहाँ क्लर्क की नौकरी मिली है, उससे भी हटाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बहन जी 160 बंगलों के मालिक को यहाँ किसी कोठी के आंगन में भी जगह ना मिले तो बताओ सिर कहाँ छुपाए। द्रौपदी आज सारे आने वाले शरणार्थियों की समस्याएं सुनती रही और उन्हें 3 बजे आने का वक्त देती रही। नरम और नाजुक पानी की बूंदें बरस बरस कर पत्थर की सख्त चट्टानों के बीच जाकर अपनी जगह बना लेती हैं। द्रौपदी के दिल में भी एक माँ का दिल है। एक शरणार्थी पति गया, बेटा गया, अब इज्जत भी जाती है। एक अधेड़ उम्र की ही शरणार्थी के मुंह से यह शब्द सुन के द्रौपदी 3 बजे तक आने का उसे कहने ही वाली थी कि शरणार्थी फिर बोल पड़ी, आंखों में जान नहीं पर जान के बिना भी नहीं, ऐसा लगता है जैसे उस दुखी शरणार्थन की दर्द कहानी सुनकर वह दूसरों को 3 बजे आना कहना उसके ख्याल से उतर गया। एक और शरणार्थी आई जिसने अपने मैले कुचेले दुपट्टे से मुश्किल से अपना शरीर ढका हुआ था, द्रौपदी की तरफ आती दिखी। शरीर के अगले हिस्से को छुपाने के लिए उसका सिर इतना झुका हुआ था कि वह सामने से आने जाने वाले को नहीं देख सकती थी। धरती में आंखें गड़ाए वह दरवाजे के पास पहुंची। वह अपने ध्यान में थी। दूसरे शरणार्थियों का सिर उसके पेट में लगा। वह धड़ाम से गिर पड़ी। गिरने की आवाज़ से ही द्रौपदी का ध्यान उसकी ओर गया। गिरने वाली औरत को दूसरे शरणार्थी की मदद से उसने बाहर वाले कमरे में दरी, जो आने जाने के कारण मिट्टी से भरी थी, उस पर लिटा दिया। कमरे में बैठे लोगों को 3 बजे आने का कहकर उन्हें उठा दिया। सभी चले गए। गिरने वाली को बेहोश देखकर द्रौपदी के बेहोश गुम हो गए। वह पसीने पसीने हो गई। पहली बैठी शरणार्थी ने उठकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। घबराई हुई द्रौपदी ने दरवाजे की झिरी से झांक कर देखा। इसी बीच उसे हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसे लगा 3 बज गए। नहीं, पर यह तो गणेशा था, खसमानु खाना। उसके मुंह से यह लफज निकल तो गए, पर उसका मन कुछ सोच में पड़ गया। उसने गणेशा को बुलाया। उसे कुछ संकोच हो रहा था, पर मजबूरी थी। वह बोली, करोल बाग गुरुद्वारे रोड लेडी डॉक्टर करतार कौर का नाम किसी से पूछ लेना। गणेशा सारी दिल्ली में टैक्सी चलाता था, वह जानता था। वह सुनते ही टैक्सी लेकर चला गया। गणेश ने जल्दी वापस आकर दरवाजे पर जोर से हॉर्न बजाया, पर द्रौपदी का ध्यान इस समय सिर्फ शरणार्थी की हाय हाय और नए जीवन दी रोने की आवाज़ में ही ध्यान था। लेडी डॉक्टर को देखकर उसकी जान में जान आई। शरणार्थी की हालत देखकर उसे दवा देकर करतारपुर ने द्रौपदी की प्रशंसा की। टैक्सी वाले के चले जाने के बाद ही मुझे ख्याल आया, नहीं तो मैं फ़ोन करती। आपने नंबर दिया था, उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा। वह घुमड़ा सिंह का नंबर था, पर अब वह जानकारी ही नहीं देते, पैसे वाले आदमी हैं ना। हाँ पर आपने किसी मिलने जुलने वालों का काम हो तो तुरंत किसी को भेज देते हैं, खसमान खाने। पैसे का इतना घमंड, द्रौपदी ने कहा। लेडी डॉक्टर ने उस शरणार्थी का नाम और पता पूछा। द्रौपदी ने कहा, अभी हमने पता और नाम पूछा ही नहीं, जरा ठीक तो हो जाए। यह भी अच्छा हुआ, अगर कहीं सड़क पर बिचारी गिरती। अच्छा, मुझे अपने काम से आना ही था, लाला जी ने कहा। क्यों, क्या बात है? वह अंबाले गए हैं, अब आने वाले हैं। अब क्या बताऊं, जिस गैराज में मैं काम करती हूं, वहां मैंने पार्टीशन करवाया है। दिन में काम करके रात को वहीं सोती हूं। मुझे पता चला है कि मेरे वाला गैराज बख्शी खुशहाल चंद एडवोकेटेड ने खरीद लिया और अपने नाम कर लिया। अच्छा, खसमानु खाने। हाँ द्रौपदी बहन, मुझे तो रात को नींद ही नहीं आती, चिंता से 3 बज गए हैं, फिर 3:30, 4, फिर 5। लाला जी के घर पर शरणार्थियों की भीड़ लगी है, पर वह अभी तक नहीं आए अम्बाले से। द्रौपदी ने अपने बेटे से कहा, चानन शाह के घर फ़ोन लगाकर पता करो। लड़के ने टेलीफोन की किताब देखकर कहा, उसके घर का तो टेलीफोन का नंबर नहीं है। नहीं है, लाला जी ने अभी ही तो कोशिश करके टेलीफोन लगवा दिया था। द्रौपदी की बात सुनकर एक शरणार्थी ने कहा, लाला जी तो दौड़ दौड़ के पूंजीपतियों का काम ही करते हैं, खसमानु खाने। आ जाते हैं नुक्स निकालने, उनके बिना काम भी तो नहीं चलता। अब चानन साहब अपनी गाड़ी में बिठाकर अम्बाले ले गए हैं, काम तो उनका भी था, पर लाला जी को भी शरणार्थियों से मिलने जाना था, तो आराम से चले गए और आराम से आ जाएंगे। बात करते करते उसने अपने बेटे को आवाज़ दी, टेलीफोन दफ्तर से लाला चानन शाह का नंबर पता करो। कहाँ से बोल रहे हैं? लाला चानन शाह की कोठी से। शाह साहब अम्बाले गए हैं? हाँ, अम्बाले गए थे। हाँ, आ गए हैं, उनको ज़रा टेलीफोन देना। आप थोड़ी देर में फ़ोन कर, इस समय वह बाहर बगीचे में मेहमानों के साथ पार्टी कर रहे हैं। अच्छा, उनसे पता करके बताएं कि लाला भगत राम उनके साथ गए थे, वो कहाँ हैं। आप कौन बोल रही हैं? द्रौपदी, लाला जी के घर से। आप 2 मिनट के लिए फ़ोन करें या अपना नंबर दें। द्रौपदी ने अपना नंबर देकर डॉक्टर साहिबा के साथ गली पार करने लगी तो फ़ोन की घंटी बज उठी। हेलो, हाँ जी, शाह जी कह रहे हैं कि लाला जी डिप्टी कमिश्नर की कोठी से ही तांगा लेकर शरणार्थी कैंप चले गए थे। मोटर में तेल कम था, शाहजी को एक दो और काम करने थे, अपने काम करते उन्हें देर हो गई थी। घर पर हमारे मेहमान बुलाए हुए थे, मोटर में तेल भी कम था, इसलिए वो लाला जी को लेने नहीं जा पाए। वह कह ही रहा था कि द्रौपदी ने फ़ोन पटक दिया और कहा, खस मनु खाने, शरणार्थी सबों को बात पता लग गई, वो सब अपने अपने घर चले गए। जैसे जैसे रात गहरा रही थी, द्रौपदी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कोई भी मोटर की आवाज़ उसे लगता उसके दरवाजे के पास बज रही है, पर मोटर आगे बढ़ जाती। रात जागते जागते बीत रही थी, साथ ही वह जच्चा बच्चा को भी संभाल रही थी। माघ पूस की रात बिना बिस्तर कोई कपड़ा भी नहीं ले गए। तवा के बिना लाला जी को नींद नहीं आती, उठते बैठते जच्चा बच्चा को कपड़ा ठीक करती, कभी अंगीठी की आँख ठीक करती, कभी बाहर झाँकती। ऐसा करते करते सवेर ही हो गई। आज कल वाले समय पर ही उनके दरवाजे पर मोटर आकर रुकी। आज भी उस हॉर्न की आवाज़ कड़क थी, पर द्रौपदी को वह आवाज़ मीठी लगी। गणेश ने टैक्सी का दरवाज़ा खोला, पतले से कंबल में लिपटे लाला जी बाहर निकले। द्रौपदी अपनी उंगलियों से कंबल की मोटाई जांच रही थी और लाला जी आ रहे थे और कह रहे थे, शरणार्थी बेचारा रात सर्दी से मर गया होगा, उसके पास एक ही कंबल था जो उसने मुझे रेल में बिठाते समय दे दिया था। द्रौपदी थे अपना बायां हाथ अपने कुर्ते की जेब में डाला। सत श्री अकाल की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। गणेश की टैक्सी जा रही थी, उसकी टैक्सी को दूर तक जाते देख कहा, इस गरीब को देखो, और वो खसमन खाना। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।